This is an ABP Life podcast.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है, सजा देना नहीं, और इसी मोटिव से 3 विधेयक पेश किए जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग, नाबालिग से रेप पर मौत की सजा, इसके साथ ही क्या क्या बदलाव करने की पेशकश की गई है, बात करेंगे आज के FII में सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ। मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता समरेंद्र कुमार। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट।
मॉनसून सेशन के आखिरी दिन मोदी सरकार की तरफ से 3 विधेयक पेश किए गए हैं। पहला, नाबालिग से रेप पर डेथ पेनाल्टी। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं सर?
नाबालिग के साथ डेथ पेनल्टी, ये इस कानून एक्चुअली जो गृह मंत्री ने जो कानून जो ये जो बिल जो लेकर आए हैं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन का संकेत दे रहा है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो 19वीं शताब्दी में जो कानून बनाए गए थे, CRPC जैसे 1898 में बना था, ICC इंडियन एविडेंस एक्ट 1870 में, तो ये सारे कानून जो थे बड़े पुराने कानून थे, और ये कानून अपने आप में शायद जिस समय बनाए गए थे उस हिसाब से शायद उनका रिलेवेंस था, लेकिन इतने सालों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और इसलिए जो कानून में जो संशोधन किया गया है उस कानून का बहुत बड़ा असर होने जा रहा है, और बार बार लोग आवाज लगाते थे कि भाई कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, उसी के अनुसार किया गया। जहां तक नाबालिग के साथ रेप का सवाल है, मेरे ख्याल से ये समय की आवाज थी, और इस कानून में जो 18 वर्ष से कम की लड़कियां हैं, अगर उनके साथ अगर कोई रेप की वारदात होती है तो उसमें बड़े कड़े और सख्त कानून लाए गए हैं, और अब मतलब अब इतना आसान नहीं होगा, और साथ साथ जो पहले लोग शादी का झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर, कई लोग जो महिलाओं के साथ खासकर नाबालिगों के साथ जो यौन संबंध बनाते थे, उनके लिए भी एक बड़ा बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है, क्योंकि पहले ये सारी चीजें हो रही थी, पर हमारे जो एग्जिस्टिंग जो कानून था उसमें कहीं कुछ ऐसे लूपहोल थे जिसके चलते वो अपराधी बच जाते थे, लेकिन ये जो कानून जो लाया गया ये बड़ा सख्त है, और इस चीज के का ख्याल रखा गया, क्योंकि जो कानून जो लाया गया उसमें महिलाओं और बच्चों का विशेष ख्याल रखा गया है, क्योंकि पहले जो कानून था उसमें मतलब महिलाओं और बच्चों के साथ किए गए अपराध को बहुत प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, लेकिन जो नए जो कानून जो लाया गया है, जो प्रपोज जो बिल है, उसमें महिलाओं और बच्चों के साथ किए गए अपराध को बहुत ही प्राथमिकता दिया गया है, और खासकर नाबालिग के साथ रेप या किसी महिला के साथ रेप को भी बहुत प्राथमिकता, बड़े सख्त कानून लाए गए हैं इसमें 20 साल के कारावास से लेके मतलब आजीवन कारावास से लेके मतलब मृत्यु दंड तक का प्रावधान है, तो मतलब ये अपने आप में एक और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून में कानून की प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है। अब ऐसा मतलब किया गया है कि पहले क्या होता था कि किसी महिला के साथ कुछ यौन शोषण या और भी कई तरीके का अपराध हो गए, और उसके बावजूद भी कई बार उसके बिना उसके कोर्ट में आए साक्ष बिना उसके स्टेटमेंट के कई बार ये केस क्लोज हो जाता था, लेकिन अब ये सारे चीज मुमकिन नहीं है। महिला को के साथ जिसके साथ कोई अपराध किया गया हो और उस अपराध में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो, उस केस में महिला को कोर्ट में आए और आकर बिना स्टेटमेंट दिए हुए केस को खत्म नहीं किया जा सकता। तो मतलब इस नए कानून में महिलाओं और बच्चों के साथ जो अपराध की घटनाएं होती हैं उसको बहुत प्राथमिकता दिया गया, और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। और साथ में बहुत सारे और भी अन्य जैसे राजद्रोह को खत्म किया गया है, क्योंकि राजद्रोह का कानून जो था वो अंग्रेजों ने लाए थे, और वो कानून लाए थे इस कारण लाए थे कि उनका उनका जो भारत पे जो शासन था वो उसको मतलब प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन अब भारत में भारतीयों का शासन है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अब जो पिछले कानून में बहुत सारे जो ऐसे कानून में जो प्रावधान थे जिसमें जिसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को फंसाया जाता था, वो चीज उसकी संभावना काफी कम हो गई है, खत्म हो गई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई 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 अगर 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 देश के खिलाफ कोई गलत काम करता है, कोई बगावत करता है या कोई ऐसा काम करता है जिससे देश की अखंडता, संप्रभुता, एकता पे कोई खतरा आए, तो उसके लिए भी कानून में जो 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 नए कानून में इसका ख्याल रखा गया है। तो राजद्रोह को कानून को खत्म किया गया है, लेकिन साथ साथ मतलब राजनीतिक जो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता से खतरा आने का कोई खतरा पैदा करने की कोशिश करता है, तो ऐसे आरोपियों से सख्त कानून इस बिल के माध्यम से लाने का प्रावधान है। तो बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं मेरे ख्याल से। ये समय की मांग थी, बहुत समय से ये चीजें चली आ रही थी, और साथ साथ जो आज की डेट में बहुत सारे जो आज टेक्नोलॉजी का युग है, हर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी काफी मतलब एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। पहले बड़े सारे अड़चनें थी, पहले भी इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन बहुत सारे इस कन्वर्ट के साथ, बड़े सारे कंडीशन के साथ। लेकिन अब आपके आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से जो कम्युनिकेशन करते हो, जो इलेक्ट्रॉनिक कोई साक्ष होता है, SMS होता है, या और भी बहुत सारे जो हैं, उनको 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 जो साक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि बड़ा स्वागत योग्य कदम है। और मेरे ख्याल से ये तो चलता रहे, ये तो इतने सालों से मतलब पुराने कानून चल रहे थे, और IPC, CRPC दोनों और एविडेंस एक्ट में भी बड़े सारे बदलाव किए गए हैं, जो प्रोविजन बड़े मतलब आज के डेट में बहुत रिलेवेंट नहीं थे, और जिससे स्पीडी जस्टिस में रुकावट आ रही थी, वो उससे वो सारे सारे अड़चने खत्म हो सके।
राजद्रोह कानून को खत्म करने की बात हुई है, मॉब लिंचिंग को डेफिनेशन में जोड़ा गया है, और हेट स्पीच को भी कानून की श्रेणी में लाया गया है। तो चाहूंगी अगर आप इन तीनों पर भी अगर बताएं कि आप इसे किस तरह से देखते हैं।
देखिए, राजद्रोह का जहां तक सवाल है, मैंने पहले भी आपको बताया था, राजद्रोह का कानून ब्रिटिशर्स ने लाया था अपने 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 शासन को बचाने के लिए, ताकि कोई विद्रोह न कर सके, कोई ब्रिटिश शासन को क्रिटिसाइज ना कर सके, कोई ऐसा एक्टिविटी ना कर सके, और कोई ऐसा कुछ ना कर सके जिससे उनके उनके शासन को पे कोई खतरा हो। तो वो उसको खत्म किया गया है, क्योंकि आज भारत में भारत भारतीयों का राज्य है, भारत में डेमोक्रेसी है, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हमें 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 मतलब बड़े सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच दिए गए हैं, जिसका आप सही रूप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप कुछ भी बोलते हैं, बहुत सारे क्रिटिसिज्म आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है, और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप देश से ही विद्रोह करने लगे, वो तो खैर गलत नहीं होगा, लेकिन आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो सरकार ने बहुत सारे जो स्टेट्स है उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उसको मिस इंटरप्रेट करके उसको राजद्रोह की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं, जो कि पहले बहुत सारे ये शासन इसका दुरुपयोग करते आई हैं। तो इसको खत्म किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है, और जैसा आपको मैंने बताया कि इसका मतलब ये नहीं है कि राजद्रोह जैसे मामले की छूट रहेगी, नए प्रावधान लाए गए हैं जिसके अनुसार मतलब अगर आप देश की अखंडता, संप्रभुता, एकता पे कोई खतरा लाने वाली एक्टिविटी में आप शामिल होते हो तो उसके अंतर्गत सजा का प्रावधान है।
हेट स्पीच को भी कानून
और हेट स्पीच को भी कानून में लाया गया है, पहले भी था लेकिन बड़े सारे लूपहोल थे, लेकिन अब ये हेट स्पीच को भी लाया गया है और अब बड़े डिटेल में तो अभी तो कानून को लाया गया, अभी ये जो सेलेक्ट कमेटी के पास जाएगा और इसको बड़े सेलेक्ट कमेटी में जो मेंबर्स हैं इसमें बड़े सारे अमेंडमेंट्स लाएंगे उस और इसके ऊपर पूरे देश में काफी अभी डिबेट भी होगा। तो मेरे ख्याल से सरकार इतनी जल्दीबाजी में इसको तुरंत नहीं लागू करने वाली है, कुछ महीने लगेंगे, पर ये पक्का है कि ये जो कानून में जो बदलाव की बात जो चल रही थी और कुछ नहीं हो रहा था इससे जनता निराश थी, लेकिन अब ये होता हुआ प्रतीत हो रहा है। हाँ, ये मेरा मानना है कि जब भी कोई संशोधन लाया जाता है तो उसका काफी क्रिटिसिज्म होता है, कई बार ऐसे चीजें आते हैं जिसके बारे में लगता है कि इररिलेवेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से धीरे 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 उसमें बदलाव आएंगे और बदलाव आने के बाद से क्योंकि भारत में इतना पुराना कानून है इसको चीजों को स्टेबलाइज होने में कुछ साल लग जाएंगे, लेकिन जब लग जाएंगे तो ये चीज पक्का है कि ये बहुत ही इफेक्टिव होगा। आज अमित शाह ने जब ये इन तीनों बिल को लाया तो उनका ये कहना था कि भाई अंग्रेजों ने जो कानून लाया था जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, उनका एक ही मकसद था कि लोगों को दंडित करना, लेकिन हमारा जो मतलब ऑब्जेक्टिव है लोगों को न्याय दिलाना, तो न्याय दिलाना और स्पीडी डिलीवरी और जस्टिस भी इस नए कानून में जो संशोधन किया गया उसका मकसद है, क्योंकि मेरे ख्याल से और भी कई प्रावधान या और भी कई सारे गाइडलाइंस लाने की बात चल रही है जिससे जैसे पुलिस पे भी बाध्यता होगी कि भाई इतने महीने के अंदर आप चार्जशीट आपको फाइल करना ही करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर आपको किसी भी कुछ खास खास जो मामलों का विस्तार करना पड़ेगा, अदालतों पे भी ये कंडीशन ये लाया जाएगा कि भाई आप जल्दी से जल्दी मामलों को लंबे समय तक लंबित नहीं कीजिए और मामले का निस्तारण कीजिए। सबसे जो अच्छी बात जो की गई है जो वो है कि अगर आज के डेट में ऐसा हो रहा था कि लोग भगोड़ा उठ जाते थे उसके बावजूद उनका ट्रायल चलता नहीं था, ट्रायल नहीं चलता था तो कोई सेंटेंसिंग भी नहीं होता था, लेकिन अब ये है कि अगर न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत किसी को भगोड़ा घोषित किया जाता है तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट सजा सुनाने का भी प्रावधान है, और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको न्यायालय की शरण में आकर आपको न्यायालय के शरण में आना होगा, इसके खिलाफ अपील करना पड़ेगा, जो न्याय प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा कदम है। अदरवाइज आप देखिए बड़े सारे क्रिमिनल्स क्राइम करके हिंदुस्तान से बाहर भाग जाते हैं, बड़े सारे जो फिनेंशियल जो क्राइम है जो बड़े सारे आपने देखा होगा नोएडा और इधर उधर के बिल्डर वगैरह, वो लोगों का पैसा लेकर भाग गए और कुछ हो नहीं पा रहा है उनके अगेंस्ट। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी चीज, मैं मुझे जो इस सरकार के बारे में एक अच्छी ये चीजें लग रही है कि इन्होंने बड़े सारे ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जो मतलब लगता था कि कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे जब जीएसटी का कानून लाया गया तो बहुत सारा हाय तौबा मचा, बहुत महीनों 1-8 साल लग गए लोग इसको क्रिटिसाइज करते गए, लेकिन आज बहुत स्टेबल है और बहुत सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो नए जो कानून में बदलाव लाया गया है ये मतलब ये टीचिंग प्रॉब्लम तो रहेगा,
मतलब आप इसे काफी मतलब प्रोग्रेसिव देखते हैं।
नहीं है ना, बहुत प्रोग्रेसिव, आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करना पड़ेगा ना।
एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली।
आप अगर कोई चेंजेस नहीं लाइएगा तो मतलब लाना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे जैसा लोग, हालांकि उसका विषय नहीं है, लेकिन एक भारत में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म की भी जरूरत थी जो सरकार ने लाया, लेकिन राजनीतिक कारण जो भी हो किन्हीं कारणों से उनको वापस लेना पड़ा, लेकिन मेरे ख्याल से ये सारे कानून की जरूरत थी इसकी भी जरूरत है, कानून है इसकी, इसके खिलाफ भी बड़ा हाय तौबा मचेगा, बहुत सारे जो जो लोग हैं इसको क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे होगा, ऐसी सिचुएशन में ऐसा हो गया तो वैसा होगा, बहुत सारे एग्जम्पशन इस बट लाए जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये कदम बहुत स्वागत योग्य है और मेरे ख्याल से मतलब सबों को सहयोग करके अमेंडमेंट के साथ मतलब कानून में बदलाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में कानून व्यवस्था, मैं भी लॉयर हूँ, और फ्रस्ट्रेशन होता है बहुत सारे मामलों में, मतलब इतना लंबा और अननेसेसरी चीजें खींच जाती हैं कि जिसको खींचने की जरूरत नहीं है। हमें डे वन से पता है कि अगर कोई केस आता है तो हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ऐसा प्रोसेस बना हुआ है कई कई साल लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं।
जी सर, और उम्मीद है कि इन सब चीजों से बिल्कुल
लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, देखिए हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, इसके भी कुछ कॉन्स आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जब भी आप कोई चेंज लाते हैं तो उसमें आपको स्कोप होता है, समय के साथ आप और एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलता है कि इसमें ये खामियां हैं, उस खामियों को आप दूर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 साल से 5 साल लगेगा चीजों को स्टेबलाइज होने में, लेकिन ये पक्की बात है कि कुछ सालों के बाद से जब ये स्टेबलाइज कर जाएगा तो भारत का जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम भी है वो भी बहुत इफिशियंट होगा, और मतलब जो फिल्मों में डायलॉग चलता रहता है कि तारीख से तारीख, शायद ये सब पुरानी बातें हो जाएंगी कुछ सालों के बाद।
एग्जैक्टली।
थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।